ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भागवत महापुराण कृतु चतुर्स्कंद अध्याय चार छठा स्कंद अध्याय चार, इस अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थना नामक शीर्षक से चौथा श्लोक पढ़ेंगे। और आज श्रीपाद परम पूज्य अश्वदा शास्त्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि है और पुरुषोत्तम दास ठाकुर का भी, तो थोड़ा उस पर विचार करेंगे। लेकिन पहले हम लोग भागवतम से पढ़ेंगे, उसके बाद में। श्री शुका उवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अन्तः समुद्रात् उन्मग्ना ददृशु गाम द्रुमैवृतम्। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेत स पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अन्त समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैवृताम्। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेत स पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अन्त समुद्रा दुन्मग्ना ददृशुदा द्रुमैवृता। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेत स पुत्रा दश प्राचीन बर्हिष अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुं ग्रां द्रुमैवृता। ए माता जी लोग श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा यदा जब प्रचेतसः प्रचेताओं ने पुत्रा पुत्र दश दश प्राचीन बर्हिष राजा प्राचीन बरही के अंत समुद्रात समुद्र के भीतर से उन मग्ना बाहर आए द दृशु उन्होंने देखा गाम संपूर्ण पृथ्वी द्रुमई वृतम वृक्षों से आवृत है। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब प्राचीन बरही के दसों पुत्र जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संसार की समस्त पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य राजा प्राचीन बरही वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई है तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दें। प्राचीन बरही नारद की बात भली भांति समझ गए अतः वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चले गए किंतु उनके दस पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे अतएव संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब दस पुत्र प्रचेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है तो भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निस्संदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं किंतु अन्य अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्नोत्पादन कम होता है जैसा कि भगवत गीता 18:44 में कहा गया है कृषि गोरक्षण वाणिज्यम वैश्यकर्मा स्वभावजम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह यह देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय ठीक से काम में लगे। क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करने के निमित्त होते हैं जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतया गायों की रक्षा करने के निमित्त हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्जन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम 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 हरे। तो यह अध्याय जो है, इस अध्याय में, इसके पहले के अध्याय हम लोग अजामिल उपाख्यान का कथा सुने। परीक्षित महाराज के मनःपटल पर सृष्टि संबंधी कुछ बातें थी, जिसका वे विस्तार से श्रवण चाहते थे, जैसा कि उन्होंने इसके पूर्व श्लोक में प्रश्न किया है कि आप तृतीय स्कंध में, तृतीय चतुर्थ स्कंध में सृष्टि संबंधी बात की है, जिनमें आप देवताओं, मनुष्यों, नागों, पशु पक्षियों के सृष्टि संबंधी वार्ता बतलाए हैं, उन्हीं वार्ताओं का वे विस्तार से श्रवण करना चाहते थे। तो अब सृष्टि का विस्तार, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के पुत्र हुए महाराज मनु, मनु के पुत्र हुए ध्रुव के पिताजी उतानपाद और प्रियव्रत, उतानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, ध्रुव के वंशज हुए महाराज अंग, और अंग के पुत्र हुए बेन, जो कि एक पापी राजा थे, बेन से उत्पन्न हुए पृथु, पृथु से उत्पन्न हुए उनके पुत्र जिनका नाम था विजात्सव, विजितास्व। जब महाराज पृथु अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो अंतिम यज्ञ था जिसमें इंद्र आकर के और उस घोड़े का चोरी कर रहे थे, तो ये विजितास्व उस घोड़े को तो लाए ही, इंद्र को ही पकड़ कर लाए और इंद्र से अंतर्ध्यान होने का विद्या प्राप्त किए, इसीलिए उनका एक दूसरा नाम था अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान या विजितास्वा के पुत्र हुए हविर्ध्यान, हविर्ध्यान अपने पत्नी हविर्ध्यानी से छह पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें हैं बरहिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जितव्रत। ये छह पुत्र हुए, उसमें से सबसे बड़े थे बरहिषद। बरहिषद जग आदि कर्मकांड में बड़े निपुण थे, उनकी बड़ी इच्छा थी यज्ञ करने का, सबको अलग अलग कुछ इच्छा होती है, किसी भक्त को प्रसाद खाने की ज्यादा इच्छा होती है, वो देखता रहता है कब समय मिले चलो क्लास से भी, किसी भक्त को सुनने की बड़ी इच्छा होती है सुनना चाहता है, किसी भक्ति को नाचने में इच्छा होती है, किसी को कीर्तन करने में, किसी को बदमाशी करने में, अलग अलग प्रवृत्ति होती है, लेकिन भक्त ही है। तो बरहिषद जग में बड़े निपुण थे, सज्जू का समय था ऐसे भी जग उस समय का ये था, लेकिन जग में भी कर्मकांड शिक्षण में और योगाभ्यास में बड़े कुशल थे। उनको प्रजापति का उपाधि दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि वे जग में इतने निपुण थे कि राजकार्य का भार छोड़ देते थे, वे जग में ही लगे रहते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था जग करते थे, राजकार्य कैसे चल रहा है भगवान भरोसे छोड़ते थे, जैसे हम लोग छोड़ते हैं भगवान भरोसे काम चलता है। महाराज युधिष्ठिर भी ऐसे ही थे, महाराज युधिष्ठिर भगवत भजन में इतने निपुण थे कि राजकार्य का भार छोड़ते थे। अपिपल धर्म राजा पितृवत रंजन प्रभु निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण पादानु सेवया। हरि भजन में इतने लगे रहते थे कि कैसे राज चल रहा है पता नहीं। जैसे अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन आ रहे थे तो कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, कैसे घोड़े चल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन घोड़े राइट टाइम, जो जो अक्रूर जी सोच रहे थे घोड़े लोग भगवान कृष्ण के कृपा से उनकी इच्छा को पूरा किए। सुबह सुबह अक्रूर जी मथुरा से निकले थे और रास्ते में बहुत कुछ सोच रहे थे, यहां तक सोच लिए कि मैं शाम को पहुंचूंगा। मथुरा से वृंदावन को ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सोच लिए कि मैं शाम को पहुंचूंगा, शाम को पहुंचूंगा तो कैसे मैं मिलूंगा, कैसे नंद बाबा हमारा इंट्रोडक्शन देंगे कृष्ण बलराम से, इत्यादि इत्यादि सब कुछ सोच रहे थे। जैसा वो सोच रहे थे भगवान वैसा ही कराए। तो घोड़े भी जो वो सोच रहे थे, घोड़े ही बेचारे वही सोच रहे थे, जिस गति से वे चल रहे थे उसी गति से घोड़े भी चल रहे थे। तो राम भरोसे कहते हैं ना, तो राम भरोसे राज चल रहा था महाराज बरहिषत का। ऐसा कहा जाता है कि इस समय इतने यज्ञ इत्यादि में उनका मन लग गया, कभी कभी तो बहाना बनाते थे राज से छोड़छाड़ करके, चलो यज्ञ करना है, उसी में लगे रहते हैं। और उस समय में यह सारी पृथ्वी पूर्व दिशा की तरफ अग्रभाग करके फैलाए हुए कुश से ढक गया। कुश देखें आप लोग, कुश बड़ा काम का चीज होता है। भगवान वामन देव को कुश दिया गया था, जैसे शुक्राचार्य का आगे फूट गया ना, कुश का चटाई बनाते हैं। तो कुश से पूरा पृथ्वी भर गया, लेकिन यह बात देखने की थी कि कुश का जो अग्रभाग है वो पूरब दिशा को फेस कर रहा था, इसीलिए इनका नाम पड़ा प्राचीन बरहिषत, प्राची दिशा की तरफ, पूरब दिशा की तरफ कुश का अग्रभाग हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा प्राचीन बरहिषत। महाराज प्राचीन बरहिषत भजन में इतने निपुण थे, इतने लगे थे कि उन्हें अन्य किसी चीज का मन ही नहीं कर रहा था, वो सारी बात भूल गए थे। हम लोग भी कभी कभी कुछ सेवा हो जाता है तो खाना पीना भूल जाते हैं ना, कहते हैं पता नहीं चलता है, प्रसाद नहीं खाया, अरे याद ही नहीं आया, प्रसाद खाने भूल जाते हैं। तो भजन में मन लग जाए तो सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। जिसका मन नहीं लगेगा वही ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा, जैसे मेरा, जिसका मन लग जाएगा कृष्ण में वो ब्रह्मचारी जरूर रहेगा। जिसका मन भगवान के नाम में लग जाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, ये ब्रह्मचारी लोग धन्य हैं। ये स्ट्रगलिंग ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बेटर बी ऑनेस्ट स्ट्रीट स्वीपर देन ए प्रिटेंडर। जब ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हो तो गृहस्थ बनना अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचारी रहने का सरल तरीका है कृष्ण पादानु सेवया, मन को कृष्ण में लगा लो। महाराज प्राचीन बरहिषत ऐसे लगा लिए थे, ऐसे लगा रहे थे सब कुछ भूल गए थे। माता जी लोग आप शांत नहीं रहोगे क्या, बात क्यों कर रही हो? क्या बोल रहा था? वो भूल गए थे कि कुछ और भी करना है, तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा उनको याद दिलाने के लिए कि बेटा तुम्हारा भी काम है, हमारा परंपरा जो है वो गृहस्थों का परंपरा है, एक आध ब्रह्मचारी हो गए नारद जी चतुष कुमार, नहीं तो अदरवाइज हमारा काम ही है सृष्टि करना, तो बाप के बिजनेस में तुम भी लगे रहो, खानदानी बिजनेस है सृष्टि करना है, ब्रह्मा जी का खानदानी बिजनेस है सृष्टि करना, प्रजापति है। तो एक खानदानी बिजनेस में तुम लोग लगो। तो एक समुद्र के पुत्री जिसका नाम था शतदुर्ति, बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी। वो शतदुर्ति को लेकर के आए ब्रह्मा जी, हाथ से लेकर के आए कि देखो तुम्हारे लिए एक सुयोग्य बालिका ढूंढे हैं, ये समुद्र की पुत्री है, ये समुद्र सब गुण संपन्न है, समुद्र के बहुत गुण हैं। कुछ आप लोग जो भी जाते हो ना, कुछ गुण प्राप्त किया है? एक गुण बताओ कोई। क्या? पूरा गटर का पानी चढ़ता है। तो समुद्र का एक गुण हमें बताया कि पूरा गटर का पानी चला जाता है, और समस्त गंदगी को समुद्र ले लेता है। वैसे ही समुद्र से सीखना चाहिए कि संसार गटर है, विष है, तो प्रचार करने में बहुत विष प्राप्त होगा, और विष को कैसे पचाना समुद्र से सीखें। जब प्रचार करने जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब प्रचार करने जाते हैं तो लोगों का लाइफ मर्सी प्रीचर लोग यहां पर हैं, कुछ लोग एक आध लोग, कोई भी नहीं है, यही गड़बड़ी है। हमें संग देना चाहिए न कि संग लेना चाहिए। तो जब हम प्रचार करना चाहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे, जाएं लाइफ मर्सी करने जाएं, तो लोगों को हम संग दें, यानी कृष्ण भावना दें, न कि उन लोगों का संग ले। तो समुद्र से वेरी गुड, ये सीखें। और कुछ समुद्र से क्या सीखते हो? नहीं नहीं समुद्र से शिक्षा क्या प्राप्त करते हो? हैं? नहीं ऐसा तो बात नहीं है। हाँ, समुद्र अपना सीमा उल्लंघन नहीं करता है। कितना भी ऑल ओवर इंडिया में खूब वर्षा हो जाए, पेपर और टीवी में डेली आए कि इसके समान कभी वर्षा ही नहीं हुआ, तभी समुद्र में बाढ़ नहीं आता। नदियों में बाढ़ आएगा, समुद्र में नहीं। और कितना भी अकाल पड़ जाए, अनावृष्टि हो, तो भी पानी कम नहीं होता है। तो इससे वैष्णवों को धैर्य सीखना चाहिए, धैर्य, न कि कुछ प्राप्त हो गया तो फूल गए और कुछ कम हो गया तो हल्ला करना शुरू किए, और अपने सीमा को न लांघना, ये भी सीखना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्रॉस आवर बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। समुद्र का लहर तो देखते ही आप लोग हैं, लहर आता है लेकिन समुद्र क्या करता है? लहर को पुनः ले जाता है। तो वैसे ही हम लोगों में विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की भावना आएगी। हम लोग प्योर अभी नहीं हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की लहर आएगी, लेकिन समुद्र के समान हमें उसे क्या करना चाहिए? बदमाश ने कहां से आ गया बाबू, तुरंत भगा देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए ज्यादा देर तक, नहीं तो अजाहिल बन जाएंगे हम लोग। ज्यादा देर तक रखेंगे अजाहिल बन जाएंगे, ढूंढो मत, आए गए आए गए। और आप देखे हो कितने लोग समुद्र में आए हो? चलो बहुत लोग आए हो। एक और चीज देखी जाती है, एक समुद्र का जब लहर आता है तो बड़ा जोर से आता है, जब जाता है तो बेचारा शांत होकर जाता है, टूट करके चला जाता है। तो वैसे ही विषय वासनाएं बड़ी जोर से आती है, गुस्सा ही हुआ, आज मैं दिखा दूंगा उनको, हमारा राष्ट्रीय प्रभु को कभी कभी आ जाता है ऐसे, है ना, जय श्री श्री गौर निताय राधाराष्ट्र विहार इस तरह मचम। तो मैं राष्ट्रीय प्रभु का नाम इसलिए हम सामने बैठे हुए हैं। तो गुस्सा आता है लेकिन कुछ समय के बाद राष्ट्रीय प्रभु जरा शांत हो जाता है। हम देखे हैं ना, कभी कभी इतना गुस्सा आता है समुद्र के समान कि सबको प्रलय कर देगा,
लेकिन 5 मिनट के बाद बेचारा शांत हो जाता है। तो ये अच्छा गुण है, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। एनीवे अनेक गुण है समुद्र में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा बाप वैसी बेटी है, मन तुम्हारे योग्य है, उसका नाम है शतद्रुति। और शतद्रुति से राजा प्राचीन बरहिषद का विवाह हुआ। कालांतर में अपने पिता के आज्ञा से उन्होंने महाराज प्राचीन बरहिषद शतद्रुति से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम हुआ, उनका नाम अलग अलग है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल उन्हें प्रचेताज कहा जाता है। प्रचेताज उनका नाम नहीं है, जैसे चतुष्कुमार कुमार उनका नाम नहीं है, षड गोस्वामी है, नव जोगेंद्र, कौरव, सौ कौरव, तो वैसे ही 10 प्रचेताज हुए। प्रचेताज का अर्थ होता है प्रकृष्ट चेष्टा इति प्रचेता। प्रकृष्ट मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और चेता मीन्स इंटेलिजेंस या माइंड या हार्ट। जिनका शुद्ध हृदय हो गया हो, जिनका माइंड बिल्कुल फोकस है, कहां पर मन फोकस होना चाहिए? सवई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। चित के कई एक अर्थ है। चित मतलब कॉन्शसनेस, जो प्योर कॉन्शस वाले हैं। कृष्ण कॉन्शसनेस ही एकमात्र प्योर कॉन्शस है। तो हम सब लोग प्रचेता बनना चाहिए, सबको प्रचेता बनना चाहिए, सबका दिल साफ होना चाहिए। कथा कीर्तन सुख श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्त ही अभद्राणी विधुनोति सुष्ताम। प्रचेता बन जाएंगे यदि कथा सुनकर करके, भगवान का नाम लेकर करके हम सब लोग प्रचेता बन सकते हैं। तो ये प्रचेताज गण जो कि बिल्कुल कृष्ण कॉन्शस थे, जिनका मन बिल्कुल फिक्स था, दिल शुद्ध था, जब उनके पिताजी प्राचीन बरहिषद ने कहा बेटा तुम लोग भी फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करो, है? क्या फैमिली बिजनेस? सृष्टि करना। फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। संत कुमार इत्यादि तो ना बोल दिए, लेकिन वो बेचारे ना नहीं बोले, ठीक है हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने से पहले हम तपस्या करना चाहते हैं। विवाह एक वाहन करना, विवाह विशेष रूप से वाहन करना, और वो ट्रक होता है ना, कहते ना वाहन ट्रक है ढोने वाला, तो विवाह मतलब ढोने वाला बन रहे हो, फर्स्ट क्लास से गद्दा बन रहे हो, विवाह करने वाले फर्स्ट क्लास से ढोने वाला बन रहे हो। ढोना है, क्या ढोना है? हमें अभी भी याद है उस कोने में हरिदास प्रभु, बड़ा हरिदास हमको प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि विवाह करना खराब नहीं है। आज ही मुझे याद है, कोने में हम लोग बैठे हुए थे, वहां पर बात कर रहे थे, 1980s की बात है, कि विवाह करना खराब नहीं है, लेकिन देखो पहाड़ पर चढ़ना है ना, तो अकेले चढ़ोगे आसानी से चढ़ सकते हो, लेकिन 5 किलो भी सिर पर इधर पीठे रखो ना तो भार हो जाता है। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो पहाड़ पर चढ़ने के समान है। संसार में हम अलग प्रदेश में हैं, भजन कर रहे हैं, ये माया संसार भजन कर रहे हैं, यहां पर हम भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक एक्स्ट्रा बर्डन स्त्री को लेकर के चलना है तो कितना मुश्किल है। हरिदास प्रभु ने जो कहा आज तक हमको याद है, वो ज्ञान है, लेकिन विज्ञान नहीं था ना, इसलिए फिर वही करना पड़ा जो चाहता था मन, लेकिन याद है मुझे है? अभी हरिदास ने पूछ लेना, वो बताए थे हमको। तो विवाह फर्स्ट क्लास गद्दा बनना, ढोने वाला, मेंटली फिजिकली सब प्रकार से ढोने वाला। तो बुद्धिमान वही है जो कृष्ण भावना भावित हो, विवाह वही कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित है। यदि वह कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जिनका आविर्भाव तिथि है, उनसे कहीं पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि मैं गारंटी कैसे था कि इफ आई कैन मेक माई चिल्ड्रेन कृष्ण कॉन्शियस आई विल नॉट माइंड टू प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रेन, राइट, दैट इज विवाह जयध्वज प्रभु। विवाह कोई सामान्य चीज, जैसे भगवान ऋषभ देव कहते हैं पति न सस्यात्, वह पति पति नहीं है यदि पत्नी और परिवार को भगवत धाम न भेज दे, कृष्ण भावना भावित न बना दे। वर्णाश्रम सिस्टम कितना सुंदर ढंग से व्यवस्था किया गया है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मीन्स द लाइफ ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग, बाद में गृहस्थ। तो वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार ही ये प्रचेता लोग पिताजी का बात स्वीकार कर करके गए, ठीक है हम करेंगे। वे लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए 10,000 वर्ष तक समुद्र में प्रवेश कर करके तपस्या की। जब वे तपस्या करने के लिए जा रहे थे तो वहीं पर एक सुंदर सरोवर है जिसका वर्णन किया गया है, जहां से भगवान शिव प्रकट हुए। चतुष्कंद में आप लोग पढ़े हैं कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है, सरोवर का कितना सुंदर वर्णन किया गया है, कहां पर क्या 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 वस्तुएं थी, बड़ा मनोभावक थी। तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और इन प्रचेताओं को भगवत तत्व के संबंध में उन्होंने उपदेश दिया, तत्व का उपदेश जिसे रुद्र गीत कहते हैं या रुद्र गीता भी लोग कहते हैं। तो भगवान शिव के द्वारा जो दिया गया तत्व ज्ञान था उसी का ये लोग ध्यान करते हुए उसका जप किए, पूजा किए और इस प्रकार से वे भगवान हरि को प्रसन्न किए लोग रुद्र गीता के द्वारा। तो इस प्रकार से 10,000 वर्ष बीत चुका था, अब भगवान को प्रसन्न कर लिए, अब बाहर निकले हैं, तब से ये कथा यहां से अब शुरू हो रही है। तपस्या कर करके भगवान को प्रसन्न कर करके बाहर निकले तो यदा मतलब जब वे 10,000 वर्ष तपस्या कर भगवान को प्रसन्न कर करके बाहर निकले। अब देखिए बेटे लोग तो इधर गए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं पिताजी भी चले गए थे अब ध्यान करने के लिए, तो राज्य का भार देखने वाला कोई नहीं था। राजा होना चाहिए नहीं तो प्रजा मनमाना तो करेंगे ही, सब मनमाना करेंगे। उसमें से एक का उदाहरण दिया गया है वृक्षों का, ये लोग ही मनमाना करना शुरू किए हैं। तो यदा प्रचेत सह पुत्र दक्ष दस प्राचीन वर्ष, अच्छा इन्हीं प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, इनके पुत्र हुए दक्ष प्रजापति, जंगलों के पुत्री से इनका विवाह हुआ, सोम पुत्री से विवाह हुआ और इनसे पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। एनीवे जब ये लोग आए बाहर निकले तो क्या देखे, कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, भूगोल बदल गया था, अब भूगोल इतिहास हो गया था। जो छोड़कर गए थे उस समय बहुत सुंदर परिस्थिति थी, पृथ्वी बहुत सुंदर थी, लेकिन अब बदल चुका है। उस समय कृष्ण भावना प्रखर या चरम सीमा पर था, बाप बेटे दोनों सब कृष्ण भावना भावित थे, अन प्राचीन बरिषद यज्ञ में निपुण थे। यज्ञ का मतलब भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कैसे है? हाँ, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, नहीं यज्ञ के लिए जाएगा ना, भोक्तारम्भ जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ के भोक्ता भगवान है, और इस बात को समझते हुए लोग यज्ञ करते थे। यदि भगवान को हम संतुष्ट रखते हैं, भगवान को देख करके, भगवान से संबंधित रह कर करके, और हम कोई कार्य करते हैं भगवान से संबंध स्थापित कर करके, तो सब कुछ फर्स्ट क्लास रहेगा। और सब कुछ फर्स्ट क्लास, सब कुछ फर्स्ट क्लास माइनस भगवान मीन्स सब कुछ टेंथ क्लास और नो क्लास। फर्स्ट क्लास का डेफिनेशन है कि भगवान सेंटर में होने चाहिए। कल ही मैं किसी, नहीं परसों बात कर रहा था किसी व्यक्ति से, पैसा आजकल बड़ा टाइट पोजीशन हो गया है, मनी मार्केट टाइट है तो लोग बोलते हैं, तो मैं कहा कि मनी मार्केट टाइट इसलिए है कि लोग धर्म नहीं करते हैं। चतुष्पुरुषार्थ में देखा जाए तो पहले आता है धर्म, बाद में अर्थ, बाद में काम और बाद में मोक्ष। आज धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है, प्रभुपाद कहते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। सबका अपना अपना ड्यूटी है। ज्यादा से ज्यादा लोग पूछते कहते हैं, महाराज मैं बिल्कुल बिजनेस फर्स्ट क्लास करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, किसी को मैं सता नहीं हूं, किसी का को चिटिंग नहीं करता हूं, मैं ईमानदारी से बिजनेस करता हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं, दैट इज नॉट द मोरालिटी। वो मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी तब आती है जब भगवान से संबंध हो। सब कुछ है मोरल करो, लेकिन किस संबंध नहीं है तो क्या मोरालिटी है? वो मोरालिटी नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयीर्भूति ध्रुवा इतिर इति मम नीति। और मोरालिटी वहां पर है जहां पर कृष्ण है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि कृष्ण हैं और सांसारिक दृष्टि से इमोरल काम लगता है, वो भी सुप्रीम मोरल है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं, ये भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब बांसुरी बजाते हैं तो सब गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास जाती है। अपने पति को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, कोई गोपी दूध पिला रही थी बच्चों को, पति को खिला रही थी, सब कुछ छोड़ करके कहां गई? कृष्ण के पास। अरे हुंकारी तो भरो हैं? कृष्ण के पास गई। तो संसारिक दृष्टि से कौन से क्या हुआ? वो संदीपनी कृष्ण प्रभु, वो मोरल है कि इमोरल है? विवाहित लड़की, विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पराये पुरुष के पास जाए, इसे क्या कहेंगे? इमोरल कहेंगे ना। इमोरल नहीं है, इमोरालिटी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज द रियल मोरालिटी। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी दिए, जिसको मोरल कहते हैं उसको इमोरल बताए। महाभारत युद्ध में जब लड़ाई हो रही थी तो द्रोणाचार्य को परास्त करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को परास्त करने का एक ही तरीका है, जब कैसे भी वो सुन ले कि उनका बेटा मारा गया, अस्थावा मारा गया, क्योंकि वो वीकनेस था। भगवान ये कहवाना चाहते कि अस्थावा मारा गया, भीम कहते तो द्रोणाचार्य विश्वास नहीं करते, अर्जुन कहते तो विश्वास नहीं करते, स्वयं कृष्ण कहते तो भी विश्वास नहीं करते, लेकिन युधिष्ठिर कहेंगे तो विश्वास करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर कहिए आप कि अस्थामा मारा गया, मर नहीं गया, मारा गया। मर गया नहीं मारा गया। तो युधिष्ठिर को थोड़ा डाउट हुआ, मोरालिटी ना आ गई ना, मोरालिटी आ गई, मैं कैसे बोलूं कैसा मारा गया, ये तो मोरल नहीं है। जब ही डाउट आया उनका रथ क्या हुआ, बम नीचे गिर गया। जिन ऋषि महाराज का धर्म के चलते रथ चल रहा था पृथ्वी से ऊपर वो नीचे गिर गया, उतना ही नहीं उनको नरक में जाना पड़ा, स्वर्गारोहण के समय नरक होते हुए उनको जाना पड़ा, इसलिए कि भगवान के वाणी पर वे संदेश किए। तो दो उदाहरण देखा आप लोगों ने, एक उदाहरण गोपियों का कृष्ण के पास जाना, जिसको संसार के लोग इमोरल कहते हैं, वह सुप्रीम मोरालिटी है, और जिसको संसार के लोग मोरल कहते हैं, झूठ न बोलना, वो इमोरालिटी है जो कि नरक में ले जाएगा। तो मैं उन महाशय से कहा कि आप जो मोरल कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, चीटिंग नहीं करता हूं, यदि कृष्ण संबंध है तो आपको नरक में ले जाएगा, जब कृष्ण संबंध है तब यह फर्स्ट क्लास है। तो मोरालिटी तब सही है जब धर्म हो। झूठ बोलना पाप है, कौन डिसाइड किया है? किसी का गला काटना पाप है, आजकल लोग समझते नहीं गला काटना पाप है, आजकल झूठ बोलना पाप है समझते नहीं, मोरालिटी खत्म हो चुकी है। ये कौन सिखाया है? ये धर्म सिखाया है, और धर्म के प्रणेता कौन है? भगवान। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। तो झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, गला नहीं काटना, इज ऑल पार्ट ऑफ धर्म, ताय धर्म नहीं है केवल अर्थ धन, वो अर्थ भी नहीं है अनर्थ है, क्योंकि अधार्मिक तरह से वो धन जुटाया गया है। जब रियल अर्थ रहेगा तो कंटेनमेंट होगा, संतोष रहेगा रियल अर्थ में, और रियल अर्थ न रहेगा तो हाय हाय और जैसे तीर्थपाद को लगा हुआ है। तीर्थपाद जी, तमाल जी बताइए उनको कि मैं ही बोल रहा हूं अभी, तीर्थपाद जी हाय हाय मत करो, यहीं रह जाएगा पैसा, जल्दी लाकर मंदिर में दे दो। तो बिना धर्म का कमाया हुआ अर्थ जो है वो अनर्थ का कारण होता है, लोग सो भी नहीं पाते हैं, खा भी नहीं, काम कहां से होगा, काम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन कहां से होगा, नहीं कर पाते हैं, और मोक्ष को तो भूलिए गए हैं लोग, मानने के लिए भी तैयार नहीं करते, किसने देखा है नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, ऐसे मूर्ख लोग हैं, क्योंकि धर्म नहीं है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले धर्म महाराज ऋषि के राज में धर्म प्रवर्तित था सब जगह। माता कुंती भगवान कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो प्रार्थना की, इमे जनपदा सुवृद्धा सुपकौषधि विरुधा वनद्रा नद उद्वंतो यदंतो तो विक्षितई। माता कुंती प्रार्थना कर रही थी, जोशी महाराज का राज था, कर एक हे कृष्ण, इमे जनपदा, ये जो पूरा पृथ्वी है गांव शहर इत्यादि समृद्धा सुवृद्धा सम्यक रूप से भरा पड़ा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो विक्षितई आपके कृपा से, भगवान की कृपा रहेगी तो किसी चीज की कमी नहीं रहे, चाहे मंदिर हो, चाहे गृहस्थों का घर हो, चाहे संसार हो, कोई भी जगह हो, भगवत कृपा रहेगी, यानी धर्म का प्रवर्तन होगा, धर्म का प्रचार होगा, धर्म विराजमान रहेगा, भगवान विराजमान रहेंगे तो किसी चीज कमी नहीं होगी। कहते हैं सुपकौ औषधि विरुद्ध, वृक्षों में फल लगे हुए थे, नदियों में जल था, पर्वतों में औषधियां थी, समुद्रों में हीरे जवाहरात इत्यादि रत्न थे, ये सब कुछ प्राप्त थे, क्योंकि धार्मिक राजा थे, धर्मराज थे, ठीक वैसे ही महाराज प्राचीन बरहिषद के समय भी सब कुछ धर्म परायण था, इसलिए सब कुछ फर्स्ट क्लास था। अब राजा भी जंगल चले गए हैं, बेटे भी गए हैं समुद्र में, कोई था नहीं। तब यह परिस्थिति आई कि वहां पर केवल वृक्ष ही वृक्ष थे। जब ये लोग बाहर आए तो वे देखे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल वृक्ष ही टाल बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो तुरंत चूंकि ये प्रजापति हैं, अब विवाह होने वाला है इन लोगों को, तो प्रजा का रक्षा करना पहला धर्म है। तो देखिए कहीं पर कोई जगह नहीं रह गया है, तो वे लोग अग्नि और वायु को उत्पन्न किए हैं, जिससे सब वृक्ष जलने लगे। बाद में नारद जी आए और उन लोगों को उपदेश दिए, बताए, आगे वर्णन होगा। सॉरी, चंद्रमा आए और वे वर्णन किए, तो मैं आगे नहीं टच करूंगा, इसके पीछे जितना था वो मैं अब कह दिया। तो वृक्षों को जलाने लगे, बाद में चंद्रमा आए, उनको पेसिफाई किए और अपने पुत्री को दिए उन लोगों से विवाह करने के लिए। बाद में दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए और उनको भी बाप को भगवान शिव ने उपदेश दिया था और बेटा को हंस गुहिया उपदेश, वही बड़ा सुंदर उपदेश है, वो इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो चूंकि आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि है और पुरुषोत्तम दास, तो मैं संक्षिप्त में दोनों संबंध में कुछ पढ़ूंगा, बताऊंगा। प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के आविर्भाव तिथि पर दो लेक्चर दिए हैं। एक था 1971 में गोरखपुर में और एक लेक्चर हुआ 1976 में अटलांटा में। आप देखेंगे, आप जब वो लेक्चर सुनेंगे या पढ़ेंगे देखेंगे कि दोनों लेक्चरों में बहुत कम अंतर है, बिल्कुल यथावत ऑलमोस्ट। और उसमें प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कृपा के ऊपर गौर शक्ति हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ये गौर शक्ति हैं, उनके कृपा का गुणगान किए हैं प्रभुपाद जी कि कैसे प्रभुपाद के ऊपर उनकी कृपा हुई, जिसके चलते ये कृष्ण भावना भाव, कृष्ण भावना संघ जो है वो आज प्रचारित हो रहा है, तो उसमें एकमात्र उनका ही कृपा है। दोनों लेक्चरों में केवल भक्ति सिद्धांत के कृपा का ही वर्णन किए। संक्षिप्त में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवनी के संबंध में बताऊंगा। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, इस्कॉन में कृप विलास प्रभु ने लिखा है सिद्धांत सरस्वती नाम का ग्रंथ, तो आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, बड़ा है। भक्ति विकास महाराज ने भी लिखा है। तो इनका जन्म से इनका जो नाम था ये बिमल प्रसाद, आई थिंक वह 10th चाइल्ड, दसवें पुत्र थे अपने, दसवें या बारहवें, किसको याद है, 10th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। तो इनका जन्म पुरी में हुआ था फरवरी 6, 1874 में। वे इस तरह धाम को 1 जनवरी 1937 62 साल की उम्र में छोड़कर के कलकत्ता में छोड़कर चले गए। ऐसे सिद्धांत सरस्वती का बचपन का नाम बिमल प्रसाद था और इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जिनका नाम था केदारनाथ दत्त। तो ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, इन पर जगन्नाथ जी का विशेष कृपा था। आज भी जगन्नाथपुरी में जो रोड है जहां से जगन्नाथ जी का रथ जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही थी, जगन्नाथ जी आ रहे थे, जैसे यहां पर आपने देखा आरती होती रहती है, तो केदारनाथ दत्त बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे, तो उनके घर के सामने रथ रुका और उनकी पत्नी विमल प्रसाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेकर के आई भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ग्रहण कराने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ के चरणों में इनको रखी तो जगन्नाथ जी का माला टूट करके उन पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के द्वारा ये कृपा प्राप्त की, जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त किए। ये पाश्चात्य और वैदिक संस्कृति के बहुत बड़े स्कॉलर थे, यानी इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा कमांड था इनका। आज भी इनका इंग्लिश टफ है, आप पढ़िए इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है बहुत टफ है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी ये थे और बाद में एक छोटी घटना प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि एक समय उनके घर में कुछ आम रखा हुआ था जो ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए था, लेकिन वह अभी अर्पण नहीं किया था, भोग था, और वे इस आम को खा लिए। जब बाद में पता चला कि आम जो है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए था, भोग नहीं लगा हुआ है, तो उन्हें बड़ी ग्लानी हुई और उन्हें संकल्प किया कि मैं अब आम नहीं खाऊंगा और जीवन पर्यंत आम नहीं खाए। छोटी छोटी घटनाएं हैं जो कि वे ज्योतिषी में बड़े प्रखांड विद्वान थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सूर्य सिद्धांत, जो कि ज्योतिष के लिए बहुत ही माहिर है। बाद में भक्ति तो बचपन से थे ही, वे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण किए और अपने पिता से शिक्षा ग्रहण किए और उन्होंने एक वैष्णव सोसाइटी कायम किया जिसका नाम है गौड़ीय मठ। वे आचार्य हुए, वे आचार्य हैं, गौड़ीय मठ के आचार्य हैं। देखिए, दीक्षा लिए थे गौर किशोरदास बाबा जी से, बाबा जी दीक्षा लिए थे, बाबा जी लोग हाफ पहनते हैं, संन्यास नहीं लेते हैं। आचार्य कुछ बदल सकते हैं, सामान्य गुरु नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आचार्य बदल सकते हैं। तो इन्होंने बदला, क्या बदला? संख्या पूर्वक नाम 64 माला का जप। गौर किशोर बाबा इत्यादि अहर्निश जप करते थे, गिनते ही नहीं थे, लेकिन काउंटिंग जो है सद गोस्वामियों के अनुसार संख्या पूर्वक नाम गान नर्तवी, तो संख्या पूर्वक बीड के ऊपर जप करने का इन्होंने स्थापना किया 64 माला। भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 64 माला जप नहीं करता है तो कृष्ण उसके हाथ से अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी दूसरे आचार्य हैं जिन्होंने 64 को मिनिमाइज कर करके 16 कर दिया। तो आचार्य कर सकते, सब नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, प्रचार के लिए उन्होंने सन्यास लिया और सन्यास दिया। जब वे दीक्षा लिए गौर किशोरदास बाबा जी से तो उनका नाम हुआ विश्वभानवी देवी दैत दास। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्वभानवी देवी कौन है? विश्वभानवी देवी राधा रानी। दैत हैं? हाँ प्रिय। तो राधा रानी के प्रिय कौन हुए? और उनके दास तो कृष्णदास हुए, लेकिन नाम हुआ विश्वभानु देवी दैत दास राधा रानी के प्रिय। और इस प्रकार से विमल प्रसाद का यह नाम हुआ। कालांतर में वे संन्यास दीक्षा ग्रहण किए और उनको ऑनररी टाइटल मिला भक्ति सिद्धांत। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हुए। प्रथम केंद्र स्थापित किए कलकत्ता में, गौड़ीय मठ का प्रथम केंद्र स्थापित किए कलकत्ता में। तो अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन सन्यासी लोग अपन झगड़ा करने लगे कि ए रूम मैं लूंगा, ए रूम मैं लूंगा, ए रूम मैं लूंगा, बात होने लगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बड़ा ग्लानि हुआ कि मैंने ये मंदिर क्यों बना दिया, गलती कर दिया। कहते इसे अच्छा होता कि मार्बल को बेच करके और किताब छपवाते, उनका ऐसा पेन हुआ। एनीवे, तो अपने जीवन काल में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ का ब्रांच स्थापना किया, मोस्टली भारत में और विदेशों में, बर्मा, जर्मनी और इंग्लैंड में वे स्थापित किए। इनका जो सिद्धांत था वह है अचिंत भेद अभेद तत्व, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का जो कोटेशन है, एक कोटेशन यहां पर उद्धृत किया, लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग बट द हाइएस्ट गुड फॉर माय वर्स्ट एनिमी। मेरा सबसे बड़ा जो शत्रु है उसका भी कल्याण हो, मेरे लिए कोई अच्छा हो या ना हो, मेरे शत्रु का भी कल्याण हो, यही उनका इच्छा था। तो इस प्रकार से आप लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संबंध में, बहुत कुछ है। और मैं सोचा कि इतना ही, पुरुषोत्तम दास ठाकुर के विषय में थोड़ा है तो मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग सुन लेना। The 23rd and 24th prominent devotee of Nityananda Prabhu were Sadashiv Kaviraj and his son Purushottam Das, who are the 10th Gopal. Since birth, Purushottam Das was merged in the service of the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu, and he was always engaged in childish play with Lord Krishna. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 11, 8-39. Sri Sadashiv Kaviraj was extremely fortunate. His son's name Sri Purushottam Das. He was never extremely conscious of his material body. Nityananda Chandra enacted many pastimes from within his heart. Chaitanya Bhagavat Antalila Antabhag. Sri Purushottam Thakur had three main disciples, Sri Madhava Acharya, Sri Jagadanandan Acharya and Devaki Nandan Das. Not me, somebody else. Who were born in Kulina Brahman family. Madhava Acharya married Nityanand Prabhu daughter Ganga Devi. Devaki Nandan was the author of the book वैष्णव बंधन। पुरुषोत्तम दास ठाकुर स्क्रिप्ट वाज प्रीवियसली एट सुखसागर, नाउ ही डीटीआर एट चंद्रीय ग्राम। दिस टेम्पल इज कॉल बसु जहानवा पथ। परहैप्स दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट कन्हाई ठाकुर द सन ऑफ पुरुषोत्तम was the adopted son of Sri Jahanwa. Sri Purushottam Thakur was the cowherd boy अस्तोक कृष्ण इन कृष्ण लीला. दिस इज व्हाट डिस्क्रिप्शन अबाउट पुरुषोत्तम, नथिंग मच मोर देन दिस. सो आई विल स्टॉप हियर. यू ऑल हैव होल डे टाइम. आज आप लोग पढ़ सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में. आजकल तो कंप्यूटर जो है, इंटरनेट पर जाओ सब कुछ आ जाएगा. गौर गोविंद महाराज का भी आज तिरुभाव तिथि है. गौर गोविंद महाराज एक महान वैष्णव हैं. मेरी मुलाकात उनसे हुई थी 78 सम टाइम, और फिर बाद में 81 में. हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे थे कलकत्ता से उड़ीसा 78 में. तो छोटा झोपड़ी था, आगे कुछ नहीं था, जंगल, वो पहाड़ी था, पहाड़ी जैसा था, और पसाल के छोटे छोटे पौधे थे, जिसे वो दोना बनता है ना पतल खाने का, उसका वही, और कुछ नहीं था उधर. जब फर्स्ट टाइम मैं हाईवे नहीं था उस समय, जो अभी हाईवे है वो छोटा सा रोड, अभी कंकड़ पत्थर डाल रहे थे, छोटा सा छोटा रोड के लिए, पूरी का रास्ता शायद. तो प्रथम बार मैं वहां मिला था, और महाराज में वैष्णव सेवा की बड़ी प्रवृत्ति थी. वे पर्सनली प्रसाद खिलाए, वहीं बरौंदा में हम लोग बैठ करके प्रसाद खाए. भावभूति प्रभु हमारे लीडर थे, और हम लोग केवल कुछ समय के लिए थे, प्रसाद खाए, बाद में फिर चले गए. फिर आई थिंक 80 में सेकेंड टाइम मैं मिला उनसे, तो उस समय मंदिर बन रहा था, तो फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो उसमें एक रूम में वे रहते थे. अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी में रहते थे, और वे भागवतम का अनुवाद करते थे उड़िया भाषा में. महाराज बड़े रसिक भक्त हैं, हम लोगों को तो उड़िया आता नहीं था, तो वे अनुवाद जो किए थे वो लगे पढ़ने, और फिर बाद में उसको अंग्रेजी में समझाने लगे. और उनका बोलने का जो भाषा था, बड़ा बिल्कुल अंदर जाएगा वैसा भाषा था, नथिंग टू हाइड, वेरी स्ट्रांगली. प्रभुपाद जी हमको बोला है ये मुझे करना है, आप लोग आशीर्वाद दो कि हम करें. फिर कहे तुम तो बॉम्बे वाले हो, पैसा थोड़ा भेज देना, देखो मंदिर बन रहा है और किताब भी छापना है, उन्होंने कहा था. देखो माई सेकेंड मीटिंग विथ हिम. थर्ड मीटिंग ही केम हियर बॉम्बे. फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू अमेरिका. ही वॉज स्टेइंग इन रूम नंबर 406. ब्रजारी प्रभु था, आई थिंक 85-86 था उस समय. ब्रजारी प्रभु यहां पर थे उस समय. तो हम लोग महाराज से मिलने गए थे, तो बहुत कुछ बात हुआ, याद सब कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन बड़ा अच्छा मीटिंग रहा. और महाराज हमेशा कृष्ण के संबंध में बात करते थे, जब भी बात करते थे तो उसमें रम जाते थे और हंसते थे, बात करते करते हंसते थे, खूब हंसते थे, बात करते करते हंसते थे. फिर बाद में ऐसे उनसे कई एक बार मुलाकात हुई. मेरा अंतिम मुलाकात हुआ जिस समय वे इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, रूम नंबर 86, फोर्थ फ्लोर, भक्ति चारु महाराज के रूम के बगल वाले में थे. मुझे बड़ा प्यार करते थे, सबको प्यार करते थे, मुझको भी प्यार करते थे. तो बाय दैट टाइम मैं वाइस प्रेसिडेंट था मंदिर का, एक्टिंग प्रेसिडेंट. तो कहे कि देखो आप लोग लीडर हो, आप लोग कुछ करो. पता नहीं जीबीसी से उनका थोड़ा अच्छा बनाव नहीं था. जीबीसी कुछ नियम कानून चाहते थे लगाना, लेकिन वे चाहते प्रभुपाद जी जो कहें मैं वो करूंगा, तो कुछ कंट्रोवर्सी था. तो कहे जीबीसी हमको मारना चाहता है, ऐसे कहे हमको मारना चाहता है जीबीसी. सिर पर थे जोर से, और मैं भी उस समय था वहां पर, टेम्पल पर्सनलों की मीटिंग थी, उस मीटिंग में गया था। और उसके दो दिन बाद महाराज इस संसार को छोड़कर चले गए। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि महाराज प्रभुपाद जी के डेडिकेटेड शोल्डर थे और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिलॉसफी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और किसको अच्छा लगे या न लगे उसका वो देखभाल नहीं करते थे, क्या अच्छा है वो कहते थे, गाली भी देते थे, क्या अच्छा है वो कहते थे, क्या अच्छा लगे वो नहीं कहते थे। दैट वॉज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ गुरु गोविंद महाराज, क्या अच्छा है वो कहते थे। उनका आज ही मुझे एक वर्ड याद है कि हम लोगों को जब नाम जप करते हैं तो आंखों से अश्रु धारा बहनी चाहिए, वी शुड क्राई व्हेन वी चांट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, वी शुड ऑल्सो क्राई दैट वी आर नॉट फीलिंग टू क्राई व्हेन वी चांट हरे कृष्णा। जब जप करते हैं तो आंखों से आंसू आना चाहिए, लेकिन आंसू से आंसू नहीं आ रहा है उसके लिए रो कि हाय हाय आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है। रो कि आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है, मुझे आज भी वो सेंटेंस याद है। तो एनीवे गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के डेडिकेटेड शोल्डर हैं और वे प्रभुपाद जी की सेवा में आज भी लगे हुए हैं जहां भी हैं। ही होलनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। एनी क्वेश्चन और कमेंट? कौन? हाँ, वो अपने से ले लिए, वो आचार्य थे, बदल सकते थे कुछ भी, वो सफरन क्लॉथ भी अपने से लिए, संन्यास भी अपने से लिए, वो आचार्य
हरे कृष्ण
व्हाइट पहनते हैं।
प्रभु जी आप जो बोले समुद्र का लहड़ी जो सीमा उल्लंघन नहीं करते, जो सुपर साइक्लोन हुआ था उड़ीसा में 99 में जो हुआ था, वो तो सीमा उल्लंघन करके चला गया, 1000 फुट में पानी गया और लाख लाख लोग मर गए, तो सीमा उल्लंघन कर लिया ना।
तो जब वैष्णव लोग कभी कभी गुस्सा करते हैं ना, तो उनका गुस्सा सीमा डेली नहीं तोड़ते हैं, वो कभी कभी तोड़ते हैं। अब क्या समझते हो कि प्रलय के समय समुद्र चुप रहेंगे? प्रलय के समय तो ऐसे उबाल आएगा कि वो पानी इतना ऊपर जाएगा, और भी गर्म पानी, तप्त तप्त पानी होगा, ये पानी खोलता है ना, खोल करके सब कुछ खत्म कर देगा। तो वो तो प्रलय था, छोटा प्रलय था, छोटा सा। तो समुद्र में उफान आता है, वैष्णव में उफान आता है, जब उफान आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो उफान मत लाओ वैष्णव में। विष्णु से मैं एक दिन यही कह रहा था कि हम लोग जा रहे थे नॉर्मन पॉइंट सीलिंग से, तो हम सुबह जा रहे थे, दोपहर में करीब 2 बजे जा रहे थे, तो हाजी अली में बिल्कुल पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था लबालब, और सीलिंग के नीचे ही पूरा पानी भरा हुआ था। और जब शाम को हम लोग उधर से आ रहे थे, सब पानी सूख गया था। तो हमें विष्णु से कहा कि विष्णु ये इतना पानी है वहां से लेकर के वहां तक, क्या कोई आदमी कितना भी मोटर लगाओ तो 4 घंटा में इतना पानी सुखा सकता है? और वो टन लीटर पानी होगा और 4 घंटा में सूख गया। तो समुद्र की महानता है, जब आएगा तो बूम और जाएगा तो भी बूम, इसलिए समुद्र से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, यानी बड़े वैष्णवों से खिलवाड़ मत करो, उनको प्रणाम कर लो जाकर के डेली, समुद्र को प्रणाम करो, ठीक है।
हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन है, आप जो बोला विवाह जीवन गाधा जीवन, अच्छा महाराज शांतनु ये तो विवाह किया था, ये क्या गाधा जीवन बिताया गया? और प्रभुपाद महाराज ये भी विवाह किया था?
नहीं तू समझा नहीं कहने का मतलब, तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझा, मैं कहा विशेष वाहन करना, देखो एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेधी। जो गृहस्थ है उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, जो गृहमेधी है उसके लिए तकलीफ है, वो गधा जीवन जरूर है। मैं नहीं कहता हूं, प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं उद्बहत क्या है, उद्बहतो विमुढ़ा है, वाहन करता है डोता है, मूर्ख कहीं का गद्दा डोता है, उद्बहतो विमुढ़ा यही शब्द है ना प्रहलाद जी कहते हैं। तो पुत्र कलत्रादिशु जो गृहस्थ है ठीक है, गृह में दी जो है गृह थाको बोने थाको सदा होरी बोले डाको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कृष्ण भावना भावित रहो, बस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है। यदि कृष्ण भावना भावित नहीं है कोई फायदा नहीं, तो गद्दा ही है
ठीक है। और एक क्वेश्चन है,
गृहस्थ मत बनना कभी, गीत गोविंद गाते रहो
नहीं। और एक क्या है, आप बोले जो भगवान कृष्ण जो रात को बांसुरी बजाने के साथ गोपी उठा के चला, रात एक बजे बारह बजे
नहीं,
अभी को टेरिस ऊपर रात एक बजे बारह बजे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाएगा तो कोई नव विवाहित स्त्री उठा के आएगा क्या?
क्या 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 प्रश्न है मैं समझा नहीं। जरूर जाएगा, जब कृष्ण बजाएंगे तब।
ओ, इसने द्वापर युग में बजा था,
तुम बजाओगे तब नहीं, नहीं आज भी बजाएंगे तो,
अभी ईद कलि युग में ना,
नहीं नहीं आज भी जीव जीव है, वो देह को नहीं देखे, देखो देह को देखे होते ना तो घर में ही फंसे होते हैं, वो तो परमात्मा बुला रहे हैं आत्मा को, परमात्मा के बिना आत्मा कभी रह नहीं सकता है, आत्मा परमात्मा का मिलन था। तो आत्मा कलयुग का नहीं है, आत्मा सतयुग का नहीं है, आत्मा कृष्ण का है, आज ही बजाएंगे तो कृष्ण। अरे आप भी तो आए हो ना उनके बांसुरी को सुनकर के ना, बाप मां को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, अभी तो वही किया ना, अभी तो स्त्री हो ना, थोड़ा पुरुष हो, तो देह पुरुष का क्यों है, देह पुरुष का है ना, आत्मा तो प्रकृति है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, समुद्र के गुणों का जब चर्चा हो रहा था उसमें आपने कहा कि हम जब प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो विष मिलता है, उसे भी हमें सहन करने की क्षमता होनी चाहिए समुद्र के जैसा। तो यहां पर जब प्रचार शब्द इस्तेमाल हुआ उस पर मुझे एक प्रश्न दिमाग में आया कि संसार में, कभी आपने इस बारे पर ध्यान दिया कि संसार में जितनी चीजें आदमियों द्वारा मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं जो सांसारिक हैं उसको प्रचार की जरूरत होती है, चाहे वो तेल साबुन कंघी हवाई जहाज मोटर गाड़ी, सारी चीजें प्रचार पे टिके हैं मार्केट में और संसार में, उसका प्रचार न किया जाए तो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो क्या भगवान का नाम जो दिव्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसको भी प्रचार की जरूरत क्यों पड़ती है? उसकी दिव्यता हम कम नहीं कर रहे हैं प्रचार का शब्द का इस्तेमाल करके, उसके लिए और शब्द की जरूरत है कि नहीं?
आप शब्द को लेकर के बात कर रहे हो?
नहीं, भाव को लेकर के, शब्द से ही भाव प्रकट होता है ना प्रभु जी।
देखिए, आचार और प्रचार दो चीज होता है, जो व्यक्ति आचरण करता है और कुछ कहता है तो उसका असर पड़ता है। आज जो बाहर जो लोग प्रचार करते हैं वो सब फेक है, झूठा है, वो नारियल तेल का कोई स्त्री प्रचार करती है बड़ा बाल होगा, वो कभी नारियल तेल नहीं लगाती होगी, पैसा मिल रहा है ना इसे प्रचार कर रही है। तो प्रचार शब्द जो है उसका लोग यूज कर रहे हैं, प्रचार शब्द अच्छा चीज है। चेतन महाप्रभु कहते हैं कि के करे आचार ना करे प्रचार, है कुछ लोग आचार करते हैं प्रचार नहीं करते हैं, और कुछ लोग प्रचार करते हैं आचार नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को आचार और प्रचार दोनों करना है। प्रचार मतलब गोष्ठी, प्रचार का मतलब होता है अच्छा तरह से गोष्ठी, मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम, गोष्ठी करना। सर गोस्वामी गण मिलते थे आपस में, से मिलते थे, प्रचार करते थे।
हेलो, इससे मतलब मैं समझता हूँ प्रचार सबसे ज्यादा, प्रसार शब्द ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिसे हम शेयर करते हैं, जो हम अनुभूत करते हैं भगवान की दिव्यता को, जो अनुभूत
हम लोग कहते हैं प्रचार प्रसार दोनों कहते हैं। प्रसार मतलब बढ़ना, और कब बढ़ेगा, जब आग लगाओगे तब तो आग, तब बढ़ेगा, लगाओ तो आग। तो प्रचार जो है आग लगाने का काम करता है, और प्रसार अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, बात सही है। शब्द का, शब्द में भाव छिपा होता है, लेकिन क्या करें, आजकल अच्छे शब्द को लोग यूज करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्या करें, आजकल जमाना बदल गया है, सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई, धर्म खत्म हो चुका है। और कोई प्रश्न?
अब तो युद्ध बोलने, युद्ध बोल क्या बोलता है वो, प्रचार में कभी कभी को युद्ध बोलता है कि देखो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, जैसा मेंबरशिप कभी कभी कोई लोग बोलता है, ये तो पाप है वो पाप नहीं है?
बिल्कुल पाप है, महापाप है। क्या सत्य पर विश्वास नहीं है? सत्य बोलेंगे, सत्य में भगवान निहित रहते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य में भगवान निहित रहते हैं। सत्य बोलेंगे, भले रिजल्ट अभी नहीं आए लेकिन आएगा। दिल्ली में आई गए लेक्चर, वहां कहते थे कि आज गीता जयंती है किताब ले लो, वो डेली बोलते आज गीता जयंती किताब ले लो। तो एक भक्त था, उसको ये भाव नहीं आ रहा था, तो हमसे प्रश्न किया कि प्रभु जी क्या ठीक है? मैं कहा कि महापाप है। बोले हो गए, कहा बिल्कुल, गीता जयंती आज नहीं है पहला नंबर। तो जो व्यक्ति सुनेगा वो कहेगा तो हरे कृष्ण वाले मूर्खे जानते नहीं है, गीता जयंती थोड़े आज है, है? एक बात है, इस्कान का बदनामी होगा। दूसरा वो कहेगा कि सर ये बेचने के लिए कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं। और तीसरा, हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं उदाहरण दिया था वसुदेव जी का, वसुदेव जी ने कंस को शब्द दिया था, वचन दिया था कि मैं अपने सभी पुत्रों को ला करके आपको दूंगा। पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी वचन के अनुसार उनको लेकर जाना था कंस को देने के लिए, सत्य वचन का पालन करने के लिए, लेकिन उनका अपना कर्तव्य था, बाप होने के नाते बेटे का रक्षा करना उनका धर्म था। तो धर्म संकट में पड़ गए कि मैं बेटा का रक्षा करूं कि अपने वचन का रक्षा करूं। बेटा का रक्षा करना उनका धर्म था, और सत्य वचन जो दिए थे उसका रक्षा करना भी धर्म था, दो का रक्षा करना एक साथ में। उन्होंने सोचा कि बेटा का संबंध मेरे शरीर से है जो कि टेम्पररी है, और सत्य का संबंध भगवान से है। यदि मैं सत्य का रक्षा करूंगा तो भगवान आएंगे, यदि बेटे का रक्षा करूंगा भगवान गुड बाय बोल देंगे वहीं से। तो वसुदेव जी अपने बेटे को कंस को लेकर गए देने के लिए, मारने के लिए, उनके सामने बेटों को मारा कंस, सब एक के बाद एक बेटे को देखे हुए, लेकिन फिर भी सत्य प्राण थे, सत्य निष्ठ थे वसुदेव जी, इसलिए भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। तो जो सत्यनिष्ठ होगा उसके दिल में भगवान निवास करेंगे, झूठे के दिन भगवान भी कहेंगे ठीक है बाद में देखूंगा तुमको। तो झूठ बोलना महापाप है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यात्म ज्योनि हितम सत्य, सत्यात्म ज्योनि, भगवान ज्योनि है सत्य के, सत्य उनसे निकलता है, भगवान सत्य व्रत है। तो हमें सत्य का ही हमेशा शरण ग्रहण करना चाहिए, झूठ का नहीं। झूठ को कितना भी आप ये करने का प्रयास करो, यू विल फील गिल्टी योर सेल्फ, within, you will not feel happy. You know it is not right, it is wrong. You will feel guilty yourself. And end of the day, it is not truth. So better tell truth. Let it go on, whatever happened. Satya bolo. No janna dusra baat hai. Murkhta se koi bol deta nahi kar sakta, jhoot bol raha hai. Wo janta nahi isliye. लेकिन जान करके झूठ बोलना कि आज गीता जयंती है किताब ले लो, ये तो महापाप है. कोई कहना ना इसका रिजल्ट तो देखो, गीता ज्यादा वितरण हो रहा है. अरे सत्य बोलकर तो देखो, उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आएगा. झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए. झूठ बोल सकते हैं कुछ परिस्थितियों में, शास्त्र बताया है, लेकिन वो जन्म मरण और मृत्यु का झूठ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सनातन गोस्वामी झूठ बोल दिए थे कि मेरा तबीयत खराब है और भागवत पढ़ रहे थे. झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्राय सत्य बोलना चाहिए.
तो ये महाभारत के अंदर अश्वत्थाम, अश्वत्थाम वो बोलता है मार गया वो मार डाला, लेकिन मार डाला नहीं, ये झूठ था.
नहीं नहीं, भगवान के आदेश पर किया ना. भगवान ने कहा अहम तुम सर पापे हो मोक्षे श्यामी महासुचा. भगवान ने आदेश दिया था. यदि भगवान कहते हैं कि हाँ जय दो, आप भी झूठ बोलो कि आज गीता जयंती, चलो कोई बात नहीं, बोलते रहो. कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. एनी अदर क्वेश्चन? और लास्ट में इधर प्रचार करो. प्रचार करोगे तो लोग लेंगे. देखो किसी भी काम में संबंध, अविधेय, प्रयोजन. दुख की बात है आज ट्रेनिंग नहीं होती. पहले ट्रेनिंग दिया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए. किसी व्यक्ति को आप गीता देने जा रहे हो तो कम से संबंध स्थापित करो उससे. हरे कृष्णा, हाउ आर यू, कैसे हैं, परिवार कैसा है, बाल बच्चे किस ठीक हैं, भगवान कृपा आप पर है. इतना कहते हैं उसका दिल आप पर आ जाएगा. संबंध स्थापित करो, फिर अपना परिचय बताओ कि मैं इस काम से आया हूं. संबंध स्थापित करो, आप मंदिर आए हैं कि नहीं, थोड़ा बात करो, संबंध करो. बाद में करते करते आपने गीता देखा है कि नहीं है? एक श्लोक पढ़ करके सुनाओ उनको, थोड़ा बताओ. पहले संबंध स्थापित करो. गो ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी. यानी कि 10,000 गीता बांट लिया, भले 10 ही बांटो. प्रभुपाद जी कहते थे वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार. तो सत्य बोलो, सत्य बहुत जरूरी है. संबंध, अविधेय, प्रयोजन दिया गया सिद्धांत अपना है ना, पर संबंध स्थापित करो. और ये काम किया है, मैं बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया. मैं ही पहले झूठ बोलता था कभी कभी, लेकिन मैं समझा कि ये ठीक नहीं है. एक बार मैं झूठ बोला, वो हमको बहुत दे दिया. एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, उड़ीसा के थे अभी तो. एक कैप्टन सलारिया के यहां रेड हुआ था, तो वे रेड के इंचार्ज थे. तो बाद में दोस्ती हो गई, तो कैप्टन सलारिया ने हमसे उनसे संबंध जुड़ा दिया. अब संबंध हो गया तो बार बार हमको फोन करते, प्रभु जी मैं आ रहा हूं वो गेस्ट हाउस में रहने के लिए, कभी कभी गोविंदा में खाने के लिए, कभी कभी ऐसे आते थे. तो आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल कि ये आदमी हमको यूज कर रहा है. तो एक दिन उन्होंने फोन किया कि आप कहां पर हैं, तो मैं कहा कि मैं पुणे हूं, लेकिन मैं था बॉम्बे. उनको रूम चाहिए था, तो उन्होंने ब्रजहरी प्रभु को फोन किया कि मैं देखो प्रभु को बात किया, वो तो पुणे में है, हमको एक रूम चाहिए. कहा नहीं, वो तो यहीं पर है. और मुझे याद है कि मैं उस समय ड्राइव कर रहा था हाजी अली के सर्कल से, आगे हम जा रहे थे नारायण पॉइंट जा रहे थे, तो वहां पर उनका फोन आया. उनका नाम मैं भूल रहा हूं, यू नो अभी स्कूल में उनको रखा गया कमिटी में, उड़ीसा के हैं, मिस्टर बल. उन्होंने फोन किया और कहा कि देवकीनंदन जी आपसे मुझे एक विश्वास नहीं था कि आप झूठ बोलेंगे. हैं? आप बॉम्बे में हैं और कह रहे हैं पुणे में हूं, और मैं झूठ बोला था इसलिए मुझे डाउन होना पड़ा और वो हमको डांटने लगे। झूठ बोला था इसलिए मुझे सहना पड़ा, बाद में सॉरी और बोलना पड़ा, बाद में बताया क्या हुआ, लेकिन एक बार तो खत्म हो गया ना है? तो क्यों झूठ बोलने का, सत्य क्यों नहीं बोलने, बल्कि उसमें कह देना अच्छा था कि मैं रूम नहीं दे सकता हूं या खा यू नो गेस्ट हाउस मैनेजर से बात कीजिए, लेकिन क्यों झूठ बोलने का। लेकिन हो सकता है कि कृष्ण चाहते थे हमको कुछ लेसन सीखे, मैं हमेशा याद रखता हूं, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ क्या?
जय श्री कृष्णा।
हरे कृष्णा।
आप बोल रहे हैं महाराज जी जो सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है जो सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात नौचो ब्रियात सत्यम अप्रियम, तो क्या करें, किस चीज को?
कहा जाता है कि सत्य बोलिए, कटु सत्य मत बोलिए, मीठा बोलिए, अच्छा से बोलिए, लेकिन जो असत्य है कितना भी मीठा से बोलोगे तो भी असत्य ही रहेगा, तो सत्य ही बोलो। जो कहा गया ठीक कहा गया है, सत्य ही बोलो, सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत
नौचो ब्रियात सत्यम अप्रियम।
हां, लेकिन असत्य को कभी मत बोलो, उसमें असत्य को कभी मत बोलो, सत्य को बोलो, कड़वा सत्य हो, कड़वा सत्य को भी। एक उदाहरण, एक राजा था, उसका एक आंख था, तो राजा सर्वे ले रहा था कि मैं कैसा लगता हूं, तो एक आदमी से पूछा कि मैं कैसा लगता हूं, महाराज आप कान्ना है, आप कान्ना है, कान्ना समझते हो ना। दूसरे आदमी ने पूछा, कहा महाराज आपका एक ही आंख है लेकिन आप देखने में बड़े अच्छे लगते हो। दोनों ने कान्ना कहा, दोनों ने सत्य बोला, लेकिन कड़ू सत्य बोला कि आप कान्ना हो, और दूसरे ने कहा कि आपको एक ही आंख है लेकिन देखने में बड़े अच्छे लगते हो। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, मधुर सत्य बोलो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस,
हरे कृष्णा। हम लोग जब भी चैंटिंग करते हैं हमको शायद आंखों में आंसू नहीं आता है शायद, लेकिन इतना तो सही है, मेरा अनुभव है जब भी भक्त लोग हरिदास प्रभु जैसे कीर्तन गाते हैं तो आंखों से पानी जरूर आता है प्रभु।
वेरी गुड, कीप इट अप। हरिदास तू रुलाते हो सबको, हैं? वेरी गुड, अच्छा है। हाँ, इमोशन आता है, भक्ति हम करते हैं इमोशन आता है, इमोशन तो आएगा ही, लेकिन होना चाहिए डिवोशन। डिवोशन आए तो हमेशा आएगा, इमोशन में कभी कभी आता है, कभी कीर्तन भी उतार अच्छा रहता है, कभी किसी वैष्णव को बहुत दिन के बाद देखते हैं, मैं जय ध्वज को बहुत दिन के बाद देखा राय, यू नो ही केम टू रायपुर, आई सॉ हिम, आई फेल्ट इमोशनल कि हम लोग साथ में फ्रेंड थे, हमारा में खुद झगड़ा होता था, ये बस में इंचार्ज थे है? और मैं टेम्पल कमांडर था, झगड़ा करते थे हम लोग, लेकिन फिर भी मित्र थे, मित्र हैं, तो थोड़ा इमोशन ये उत्पन्न हो जाता है।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, आचार्य की परिभाषा कैसे कर सकते हम लोग? आचार्य की परिभाषा,
आचार्य का
परिभाषा,
आचार्य माम विजान याम, जो आचार्य होते हैं भगवान के अभिन्न अंग हैं, तो धर्म का स्थापना भगवान करते हैं इसलिए आचार्य कर सकते हैं। सतयुग में तपस्या है, त्रेता युग में यज्ञ है, द्वापर में ठाकुर पूजा है, और कलयुग में नाम संकीर्तन है। ये सुखदेव गोस्वामी मत भागवतम में कृत यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम दत्तामके द्वापरी परचर्यायाम कलोत्तर, तो आचार्य हैं। आचार्य का बात भगवान का से नन डिफरेंट था कि भगवान आचार्य भगवान से नन डिफरेंट है, और धर्म के प्रणेता भगवान है, धर्म तो तक्षत भगवत प्रणेता, तो वैसे आचार्य लोग धर्म के प्रणेता है।
भगवान गीता में बोले कि आचार्य उपासनम सोचम, अगर कोई व्यक्ति आचार्य की उपासना करता है डायरेक्ट तो क्या भगवत धाम जा सकते हैं?
बिल्कुल जा सकता है। आचार्य जी नॉन डिफरेंट। एक बार अच्युतानंद से किसी ने पूछा कि आप कृष्ण के विषय में जानते नहीं, कृष्ण संबंध कुछ बात हुआ तो अच्युतानंद कहे आई डोंट नो हु इज कृष्ण बट आई नो हु इज प्रभुपाद। प्रथम सब दट हाउ कैन ही से कृष्ण का प्रचार करते हैं, कृष्ण का नाम करते हैं, बोलते हैं कि मैं जानता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को जानता हूं क्योंकि प्रभुपाद ने हमको बताया है। बस सही है, प्रभुपाद ने बताया तब मैं कृष्ण भगवान है। यदि हम इस कान नहीं ज्वाइन करते कहते साहब काली दुर्गा सब एक ही है, जैसे बाहर वाले लोग कहते हैं ना, वही कहते हैं हम लोग ना, कृष्ण कौन है, दुर्गा कौन है, काली कौन है, शिव कौन है, उतना ही नहीं ब्रजनंदन श्याम सुंदर मथुरेश और द्वारका इसमें क्या अंतर हो हम जानते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेस्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काजपासना ब्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता। तो बिल्कुल क्लियर डिफिनेशन दिए हैं किसका मैं आराधना करता हूं, आराध्यो भगवान मैं उन भगवान का आराधना करता हूं, ब्रजेस्तनय नॉट मथुरेश नॉट द्वारकाधीश ब्रजे सतनय जो ब्रजराज हैं आराध्यो भगवान ब्रजस्तनय तद्धाम वृंदावनम जिनका धाम जो है वृंदावन है तद्धाम वृंदावनम क्या करते हैं रम्या काजित उपासना ब्रजवधू वर्गीण वा कल्पिता जहां लक्ष्मी जिनकी उपासना करती है और गोपियों के साथ में वे लीला विहार करते हैं ग्वाल बालों के साथ में रम्या का उपासना बजबू मृगेण वा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण मूलम प्रेमा पुमरतो भान। श्रीमद भागवत जो है प्रमाण है उन भगवान का, और भागवत का लक्ष्य क्या है परम प्रेम को स्थापित करना, परम प्रेम को देना। तो स्पष्ट बताए हैं ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नामनी धामनी निज धामनी, भगवान का धाम क्या है गोलोक धाम। ये सब कहां से प्राप्त किया प्रभुपाद जी कृपा से है ना, तो खिचड़ी खिचड़ी खाते हो तो उससे सब कुछ एक ही है। एनी अदर क्वेश्चन? हैं
स्वयंभू मनु से जो उत्तर बाद जो ध्रुव महाराज पृथ्वी महाराज सब ऐसा आए अभी तक प्रसिद्ध गण तक आए, तो ये स्वयंभू मनुंदर से ताक्षुष मनुंदर हो गया, छह मनुंदर तक आ गया है, पर इतना में ही छह मनुंदर हो गया क्या प्रभु जी?
बहुत दिन बिताए इन लोगों को ना, बहुत दिन बिता। और देखो ना 10,000 वर्ष तपस्या किए ब्रह्मचारी के रूप में, 10,000 साल तपस्या किए प्रचेता लोग ब्रह्मचारी के रूप में, गृहस्थ में कितना दिन रहेंगे वर्णन नहीं यहां पर।
तो फिर स्वयं मनुंदर में वो जो दक्ष एक था
सेम 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 दक्ष,
तो अभी एक प्रथम मनुंदर में जो दक्ष था अभी छह मनुंदर में वही दक्ष इधर आया, तो इतना दिन किधर था फिर?
आप पूछिए उनसे
किस
मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। ओके सो विल स्टॉप हियर। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।